इसलिए मैं बाबा ने कहा आत्मा समझ भाव को याद करना ये डिफिकल्ट से डिफिकल्ट भी है और सहज से सहज भी है। बोली थी ना
सोमवार
आत्मा समझ भाव को याद करना ये डिफिकल्ट से डिफिकल्ट भी है और सहज से सहज भी है। डिफिकल्ट क्यों है और सहज क्यों है? सहज क्यों है? आत्मा समझ कर बाप को याद करना सहज क्यों है? इसके कुछ कारण
आत्मा समझेंगे तो प्यार भी है तो याद भी है।
आत्मा समझेंगे तो प्यार
है
देह को याद करते तो देह का बाप सहज याद आता है। आत्मा को याद करते तो आत्मा का बाप सहज याद आता है। एक और सहज क्यों है आत्मा को समझ कर बाप को याद करना?
सुख दुख का अनुभव आत्मा करती है। सुख का अनुभव होता तो
आज परमात्मा से सुख का अनुभव होता है जिसके लिए याद करना सहज है। और
कोई है ही नहीं है ऐसा जो
जिनको याद करने
से निकालने वाला
उसके उपकारों को याद करो तो याद करना सहज है। प्राप्तियों को याद करो तो याद करना सहज है। बाप को याद करना सहज क्यों है और डिफिकल्ट क्यों है? तो सहज क्यों है क्योंकि प्राप्तियों को याद करें उनके उपकारों को याद करो तो याद करना सहज
है।
सब कुछ आ जाएगा उसमें। किसको याद करे तो बाबा के गुणों को याद करे तो भी सहज है।
और इतनी भक्ति क्यों की?
जन्म जन्म से हमने किसको पुकारा? जन्म जन्म से आत्मा ने परमात्मा को पुकारा ना।
भक्ति में भी पकड़ कर बैठे
वो प्यार अभी भी है।
भक्ति में भी कॉन्वर्सेशन करते
तो वो भक्ति भी की है उसको पुकारा भी है उसको याद किया उससे प्यार किया अभी इस जन्म में वो मिला इसके लिए याद करना सहज
होता है ना।
आत्मा का नेचुरल स्वभाव है परमात्मा को याद करना। और भी कुछ है कि आत्मा को सहज है याद करना? सर्व संबंध
बाबा ने बोला तो कह दी
बाबा ने डिफिकल्ट भी बोला
डिफिकल्ट
संसार में उससे सुख मिलता है।
जैसे दादी ने एकदम बाबा ने बोला ना यज्ञ के पहले आदि में तो उनकी उनको अतिय सुख मिला मूल स्वरूप में चले गए तो
याद करना सहज हो गया। मम्मा की मुरली थी ना अलौकिक अतीन्द्रिय ईश्वरीय सुख अभी मम्मा की मुरली चली ना
ईश्वरीय अलौकिक मुझे तो मैं विश कैसे दे सकती।
उसने बोला ना संसार के जो सुख है उसको ठोकर मार दी वो तुच्छ लगे इस सुख के सामने।
निर्भय
इच्छाएं अगर बहुत है ना और व्यर्थ बहुत ज्यादा है अगर तो भी डिफिकल्ट
डिफिकल्ट नहीं। अभी हम सहज की व्यवस्था बोले सहज सहज क्यों है? आत्मा का मूल स्वभाव जो है आत्मा जिस तत्व से बनी हुई है और परमात्मा जिस तत्व से बना हुआ है वे ही है। कोई भी चीज अपने सूक्ष्म रूप में जब चली जाती है तो वो ऑटोमेटिक उसी तत्व की ओर आकर्षित होती है जिससे वो बनी
है
मूल तत्व की ओर आकर्षित होती है। तो जैसे ही आत्मा समझते हैं और आत्मा अपने सूक्ष्म स्वरूप में स्थित होती है तो वो उसी व्यक्ति वस्तु की तरफ आकर्षित होगी जिससे वो बनी है। आत्मा प्रकृति के तत्व से बनी नहीं है आत्मा अप्राकृतिक है। इसके लिए उसका आकर्षण प्रकृति की तरफ देहभान की वजह से है परंतु मूल स्वरूप में वो ऑटोमेटिक उसकी तरफ खींची जाती है। इसके लिए भी सहज है संबंधों के कारण सहज है। सर्व संबंधों की अनुभूति उसको एक बाप से होती है एक बाप दूसरा ना कोई एक वरदान भी था ना। अगर दूसरा है तो मेहनत है अगर दूसरा है तो बुद्धि यहाँ है वहाँ जाएगी अनुभव नहीं होगा। अगर अगर एक ही है बाप ही संसार है तो बुद्धि कहीं जाने का सवाल ही नहीं है। फॉर्मेट है। तो इसके लिए जब उसका संसार ही एक है या बनाया गया है अभी संगम पर, तो उसकी याद सहज है, जिसका वो संसार है उसके लिए उसकी याद सहज है। और भी कोई पॉइंट है? याद सहज क्यों है? आत्मा को परमात्मा को याद कर, उसका बच्चा है, वो उसका बाप है, वर्षा प्राप्ति में आ जाएगा सारा।
सबको अपना बना, मैंने उसके गुणों का अपने पन की भाषा करेंगे ना,
अपने
मेरी ही है,
अपने पन की भावना
सबको गले लगा रहा है।
बाबा के जो उपकार
उपकार गुण उसके
वो याद करें तो भी सहज,
ये सब है सहज। बाबा ने दूसरा शब्द बोला है, बाप को याद करना डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है क्यों? क्योंकि आत्मा इस समय देहभान में, इसके लिए डिफिकल्ट है, और विकारों की प्रवेश में इसके लिए डिफिकल्ट है, और
संबंधित जो
देखते तो हमको
अवगुण देखते हैं
दिखाई पड़ता है ना, तो यही तो डिफिकल्ट है।
देह देहभान के कारण
सभी अभी मनुष्य दिखाई,
अवगुण देखते तो डिफिकल्ट,
अवगुण
नहीं, आत्मा समझ बाप को याद करना डिफिकल्ट क्यों है? आत्मा समझ बाबा का महावाक्य क्या है? आत्मा समझ बाप को याद करना, ये सहज से सहज है, डिफिकल्ट है डिफिकल्ट भी है, सहज तो हमने देखा भी, डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि देह भान है। डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि विकारों की प्रविष्टा है। डिफिकल्ट क्यों है? जन्म जन्म के पाप का बोझ है, इम्प्योरिटी है, आंखें देख नहीं सकती, इसको अनुभव करना है, इसके लिए डिफिकल्ट है।
आदत पड़ी देखने की,
आदत पड़ी है देह को देखने की, देह की तरफ दृष्टि जाने की।
और ये सबकॉन्शियस जो संस्कार होते हैं उसके जो संकल्प आने लगे
डिफिकल्ट 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 क्यों?
तो यही बाबा ने बोला ना, सबकॉन्शियस एक है, कॉन्शियस माइंड एक है, सबकॉन्शियस माइंड, तो सबकॉन्शियस माइंड तो बहुत डीप है, तो जब वो संकल्प आने लगते हैं तो हम
व्यर्थ या विकार के या देह भान के
नहीं, माना उसको पावर से एकदम वो चेंज करना
और डिफिकल्ट क्यों है उसको याद करना? बहुत ज्यादा माया है, बहुत ज्यादा आकर्षण है, वातावरण तमोप्रधान है, तमोप्रधान वातावरण में याद करना बहुत मुश्किल है। तमोप्रधानता आत्मा को सबसे ज्यादा देह खींचता है, प्रश्न उत्तर था ना, आत्मा को सबसे ज्यादा किससे प्यार है? देह से ही प्यार है, उसको बीमारी होती है फिर भी वही प्यारा लगता है, वो मरता है फिर भी वो प्यारा है, पता है ये बूढ़ा होने वाला है फिर भी वो प्यारा है, पता है उसके अंदर क्या है, हड्डी मांस मल मूत्र यही भरा है, फिर भी सबसे ज्यादा वो प्यारा है आत्मा, सबसे ज्यादा उसकी ज्यादा चिंता होती है देह की, देह को कुछ नहीं होना चाहिए। देह अगर कहीं किसी दिन नींद कम होगी तो सारे दिन पर ख्याल चलता है कि नींद करनी है, संकल्प होता है ना कि रात में एक ही घंटा नींद हुई, आज तो नींद अच्छी करनी चाहिए दिन भर में। योग कम हुआ तो ये संकल्प नहीं आता है कि योग करे, पर नींद कम हुई तो ये संकल्प जरूर आता है कि अलग से थोड़ी सी सेवा बाजू रख के अच्छी नींद पी जाए, चिंता है उसको देह की आत्मा को जरूरी है, पर उसको ज्यादा चिंता है, आत्मा नींद ऐसी चीज है कि वो आप ही पूरी कर देगा कभी ना कभी, वो स्वभाव ही है आत्मा का, आप ही कभी ना कभी पूरी, पर उसकी चिंता उसको ज्यादा होती है, बीमारी होती है तो उसकी चिंता उसको ज्यादा होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्यार बाबा ने कहा है आत्मा को देह से, तो ये देह का प्यार भी याद करने में देह नहीं, वो आप ही पूरी कैसे कर देगा कि हमको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, जैसे टाइम मिलेगा जो टाइम हमारा व्यर्थ में चला जाता है अदरवाइज, वो उस समय नींद में हो जाएगा, आप ही नींद आ जाएगी उस समय, जल्दी नींद आ जाएगी, कभी किसी लंबा समय नींद नहीं आ रही हो तो उस दिन जल्दी नींद आ जाएगी, वो हो जाएगा कभी ना कभी कवर अप कर देगी, बहुत ज्यादा उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, फ्रेश हो सकते हैं। तो ये बोला और क्या बोला एक हफ्ते में बोला ना। बाप ट्यूशन देते हैं किसकी? मनुष्य से
देवता
बनाने की, थोड़ी से हीरा बनाने की, और इसमें खर्चा नहीं है। वो मुरली में बहुत सारी पॉइंट्स है, किस किस बातों में खर्चा नहीं है।
बड़े बाप के बच्चे हैं तो ना छोटी चीज का ना छोटी बातों में घबराना।
वो पिछले हफ्ते का था। खर्चा किसकी? पढ़ाई में खर्चा नहीं है। बाप का बना गोद और बाप बन गया, खर्चा नहीं है।
बाप खर्चा,
किसी के गोद में जन्म लिया और बाप बना, खर्चा नहीं है। वर्षा लेने में खर्चा नहीं है, पढ़ाई में खर्चा नहीं है, और उसी में
बाप को याद
कर एक नया पैसा, एक नया भी खर्चा। वो हेल्दी बनने के लिए नया पैसा खर्च नहीं है। तो याद करने में खर्चा नहीं है, योग में खर्चा नहीं है, पवित्र बनने में खर्चा नहीं है, कौड़ी से देवता बनने में खर्चा नहीं है। बहुत सारी बातें, ये सब बातों में खर्चा नहीं है।
खर्चा सेवा में ही खाली,
संसार में खर्चा ही खर्चा है।
सब्जी में भी खर्चा नहीं। ब्राह्मण जीवन में एक बार का संसार बनाने लगे तो
क्या
एक
बाप ही संसार सहज और स्वतः सहज योगी बन जाते हैं, सहज स्वराज अधिकारी बन जाते हैं उसकी आत्मा। और
अल्लाह के
अल्लाह
अल्लाह मिला उल्टा बनाने आए,
उसमें दो शब्द है, ऐसे दो शब्द हैं, अल्लाह पद बाबा आए हैं तुम्हें अल्लाह पद दिलाने
के लिए,
और दूसरा है अल्लाह बाप। ये दोनों बातें अगर कोई मुसलमान सुने तो झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि उनके इसमें अल्लाह ना बाप है ना माँ है, वो शब्द ही है, अरबिक शब्द है अल्लाह। तो अल्लाह जब कहते हैं तो माँ बाप नहीं है, वो अल्लाह को इस रीति से नहीं देखते, मालिक रूप से देखते हैं, तुलना इस तरह की नहीं होती है। और अल्लाह पद भगवान का वो भी
अल्लाह लोग भी
अल्लाह लोग अल्लाह पद अल्लाह। तो बाबा क्या करने आए हैं?
सुल्टा
करने। सुल्टा अर्थात हाथ देह समझ कर बैठते हैं तो उल्टा समझ, उल्टा होकर बैठते हैं, आत्मा समझना माना
सुल्टा।
और
नजर से निहाल करने की सेवा करनी है तो एक बाप
को अपने नजर में नजर से निहाल अर्थात
बस
किसी आत्मा को भरपूर
भरपूर एकदम फुल टंकी,
किसी आत्मा को भरपूर करना अर्थात नजर किसी आत्मा को, जब किसी को आत्मा देखते हो तो तुम उसे करंट देते हो। और मैं तुम बंदरों की सेना लेकर क्या रावण पर जीत पहनाने आया हूँ। महाभारत के उदाहरण देते हैं,
भगवान बहुत कर्म योगी स्वराज्य अधिकारी मास्टर सर्वेश्वर,
उसमें दो प्रकार के वरदान जो है, एक में बाबा ने कहा कि बाप करण करावन हारे और आत्मा करण हारे, ये स्मृति। एक दूसरी जगह बोला कि आत्मा करण करावन हार है, ये कर्मेंद्रिया करण हार है। आत्मा मैं अलग हूँ, मैं विशेष हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये देह से अलग, ये एक स्मृति। तो स्वराज सहज स्वराज्य अधिकारी बन जाएंगे। वो जो दूसरा बोला कि वो परमात्मा करण करावन हार है, मैं करण हार हूँ, ये स्मृति स्वस्थिति और सेवा का बैलेंस। मतलब ये दोनों बातें हैं इसमें, फिर भी मैपन आने का चांसेस है कि मैं करण हार करण करावन हारू, मैं मालिक हूँ, मैं ये हूँ, पर उससे भी ऊपर की कॉन्शियसनेस है कि मैं करण हारू और वो करण करावन हार है, मतलब कराने वाला वो है, ये थोड़ी और ऊंची कॉन्शियसनेस है। दोनों प्रकार के वरदान है।
और कभी भी करण मैं करावन हार नहीं समझो,
माया को आने का चांस है।
ज्ञान खुशी खुशी से सुना,
लाचारी से नहीं सुना।
क्या?
सुनो और सुनाओ, दोनों भी बोलो,
सुनो भी सुनाना
खुशी खुशी से सुनाओ, सुनो भी और सुनाओ भी, दोनों मत
सुनना,
और दोपहर में क्या करो, भोजन कैसा करो, सूक्ष्म और थोड़ा, जितना ज्यादा खाओगे उतनी बाबा ने क्या
थोड़ा, हम तो ब्राह्मण
देवताओं का भोजन खुशी जैसी खुराक
होता है,
भोजन तब तक खाना चाहिए ऐसे कहते हैं कि जब ऐसे लगा कि अभी आधा हो गया, उस टाइम पे उसे छोड़ देना चाहिए, मतलब उतना ही लेना चाहिए। बहुत ज्यादा भरपेट, पूरा भरपेट खाना, क्योंकि योग के लिए दो बातें खाली चाहिए, बुद्धि और पेट।
पेट
साफ तो कहते हैं तो देवताओं का भोजन सूक्ष्म
वैराग पर भी बहुत, दो तीन बार देह के वैराग
पर। हम यहाँ पर
पढ़ाई
ज्ञान सुनाने की बात, तो उसमें दोपहर में बाबा ने क्या कहा,
आपस में बैठो,
आपस में ज्ञान की चर्चा करो,
ज्ञान चर्चा, ज्ञान चिंतन,
दूसरों ने कोई होशियार हो तो उसको बिठाओ, कोई किसने किसने क्या प्रश्न पूछा वो आपस में चर्चा करो, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि खाली मुरली पढ़ना सुनना इससे नहीं होता है। जब तक ज्ञान का चर्चा नहीं की जाती है उसमें की पॉइंट स्पष्ट नहीं होती है, बहुत सारी वो पॉइंट पॉइंट बन के रह जाती है,
ज्ञान चर्चा नहीं होती है,
ज्ञान भट्टी बहुत आवश्यक है। हाँ, आपस में रोज थोड़ा सा ज्ञान की चर्चा बहुत जरूरी
है,
क्योंकि वो वाक्य ऐसे है इतनी बार सुने कि यहाँ से सुना और निकल गया, बाप समान बनो, लक्ष्मी नारायण बनो, ये सब का कोई असर ही नहीं है आत्मा पर। बाप समान बनो क्या, फॉलो फादर व्हाट, उसका क्या हाथ में कुछ है ही नहीं, उसका चर्चा चाहिए, उसके ऊपर चिंतन चाहिए, उसके ऊपर मनन चाहिए, एकांत चाहिए, अंतर्मुखता चाहिए, सॉलिट्यूड, एकांत, बहुत सारी चीजें, ये सब जब तक ये सब नहीं है। एक अभी एक किताब निकली है आज ही, कितने दी मुझे ज्ञान सरोवर में, छोटी सी किताब है पवित्रता के ऊपर, उसमें एक बहुत सुंदर प्रश्न है कि कई आत्माएं ज्ञान में आ गई और बहुत पुरानी है, महायज्ञ में समर्पित हो गई है, तन मन धन से अपनी सेवाएं कर रही है, फिर भी किसी देहधारी में फंसती है, क्या कारण है? एक प्रश्न है, छोटी सी किताब है, 10-15-20 पेजेस की पवित्रता के ऊपर किताब आई है, उसमें कुमारों के प्रति, कुमारों का कहाँ कहाँ आकर्षण होता है उसके पूरे 16 पॉइंट दिए हुए उसमें, और पवित्रता की बहुत सूक्ष्म परिभाषा दी हुई है। तो ये प्रश्न है उसमें उत्तर, हाँ मतलब क्यों देहधारी में क्यों फंसते, इतना सब कुछ संपूर्ण ज्ञान है, तन मन धन से सेवा की है, लंबे समय से है, पुराने है, महायज्ञ में समर्पित है, फिर भी किसी देहधारी में फंसते हैं क्यों? दो कारण दिए उसमें, वो तो दूसरी बात है, कर्म फिलोसफी। यहाँ पे उन्होंने देखे एक तो ज्ञान और योग, अभी ज्ञान में ज्ञान को हजम नहीं किया है, समझा तो सबने है पर उसकी गहराई में नहीं गए, क्योंकि ये जो मुरली है इसका एक एक वाक्य जो है बहुत बहुत, एक ही लाइन में कितना सार है, मतलब एक एक लाइन पर निबंध लिखा जा सकता है, एक एक लाइन पर चर्चा हो सकती है, क्लास किया जा सकता है, इतनी गहराई है एक एक लाइन। अभी एक है मुरली आई, हमने पढ़ा और रख दिया, उसका प्रभाव कहाँ तक पहुंचा है, सबकॉन्शियस अंदर तो गया ही नहीं, डेप्थ में कहाँ गए, तो ज्ञान को हजम नहीं किया, ज्ञान का मनन चिंतन नहीं किया, ज्ञान की गहराई में नहीं किया, इसके लिए ज्ञान में कच्चे रह गए, इसके लिए फिर तृप्ति चंचल, ये ऐसा क्यों, आज की मुरली में है ना पार्टियों से मुलाकात, क्यों क्या, ब्राह्मणों की वृत्ति चंचल होने की बहुत बड़ी परिभाषा है, संसार की आत्माओं की वृत्ति जो चंचल होती है वो विकारी, विकार के अधीन है, यहाँ विकार की बात कम है पर यहाँ किसी और रीति से चंचल होती है, ये ऐसा क्यों, यहाँ ऐसा क्यों, यहाँ निगेटिव जो भी दिखता है, सारा कुछ दिखता है, जहाँ पे संपूर्ण पॉलिटिक्स है वो सब निगेटिव ही है, इस सब के बीच में अपने आप को ऊपर रखना ही बहुत बड़ी तपस्या है। तो पहला कारण बताए ज्ञान की कमी, दूसरा कारण बताए योग की कमी, योग की गहराई में जाकर अगर बाबा से शक्तियां नहीं ली तो यहाँ रहकर भी आत्मा कच्ची रह जाएगी, अनुभव की कमी, हाँ वो मम्मा की मुरली थी ना, क्या था उसमें वैराग्य की बातें थी, राजा गोपी चंद और मीरा का उदाहरण दिया था उसने अभी कल परसों, अतीन्द्रिय अलौकिक ईश्वरीय सुख, आत्मा को प्यास है सुख की, अगर उसको सुख नहीं दिया गया, अतीन्द्रिय सुख अमृत वेले उसको नहीं मिल रहा है, तो सारे दिन भर वो घूमना फिरना, खाना पीना, मौज शोक, कपड़े साधन, इन सब में भटकेगी, और अंतरिक आत्मा दुखी रहेगी। जो भी आत्मा तीव्र पुरुषार्थी नहीं कर रही है वो अंदर से दुखी है, ये समझ लो ना, असंतुष्ट है। बाहर से वो नहीं दिखाएगी परंतु अंदर से दुखी है, क्योंकि आत्मा की संतुष्टता पुरुषार्थ में ही है और किसी भी सुख साधन में नहीं है। चाहे कितना भी कुछ दे दिया जाए, पद सम्मान नाम सब मिल जाए, परंतु आत्मा संतुष्ट नहीं हो सकती।
वो सब शरीर का है,
वो सब शरीर, अलौकिक आत्मा लौकिक से संतुष्ट हो ही नहीं सकती है। एक बाबा का महावाक्य है, हाँ, अल्प काल छोटे समय का, पर अंदर से आत्मा दुखी रहेगी। उसको पता रहेगा कि मैं श्रीमत का उल्लंघन कर रही हूँ, क्योंकि बाप की श्रीमत है अमृत वेला, मुरली का मनन चिंतन एकांत श्रेष्ठ पुरुषार्थ रूहानी ड्रिल का अभ्यास आत्मिक दृष्टि की तपस्या और शरीरीपन का बीच बीच में अभ्यास, ये सारा है। ये अगर हम नहीं कर रहे, बाबा ने जो होमवर्क दिया वो हमको पता नहीं, तो वो हम दुखी रहेंगे अंदर से, भले हम नहीं दिखाएंगे पर अंदर से आत्मा असंतुष्ट रहते। तो ये एक पॉइंट थी। और क्या बोला था अनिल भाई बाबा ने एक हफ्ते में? हाँ सफलता हो गई आज का, और अच्छे अच्छे पॉइंट रहम दिल बनना है, बाप समान अपकारी पर उपकार। बाबा ने कहा ना, तुमने मुझे बुलाया, कहाँ बुलाया, पतित दुनिया में आओ पतित शरीर में, कैसे देखो कैसे मुझे निमंत्रण दिया, ऐसे भी बोला ना उसने, मुझे कैसे निमंत्रण देते हैं। तो बाबा रहम दिल है, अल रहीम अल रहमान, उर्दू में कुरान में भगवान की जो महिमा क्या है, अल रहीम अल रहमान मतलब कंपैशनेट, मोस्ट कंपैशनेट, परोपकारी, उसकी अपकारी पर भी उपकार करने वाला, बहुत ऊंची स्थिति है। और अच्छा चलो वरदान, बहुत सारे वरदान है। सेवाओं में क्या क्या होता है?
बैलेंस चाहिए।
बाबा ने कहा सेवा में ही बेहद की वैराग्य क्या होती है, वृत्ति खत्म होती है, और सेवा में ही खुशी और शक्ति भी मिलती है। परंतु हाँ वो भी दूसरा एक वरदान है, वो वैसा वरदान है, उसमें संबंध और स्वभाव का विस्तार होता है, स्वभाव का विस्तार, संबंध का विस्तार, स्वार्थ सेवाओं में ही समाया हुआ होता है, सेवा में ही वैराग्य नष्ट होता है, ये दूसरा वरदान है। पर सेवा में ही खुशी भी मिलती है, शक्ति भी मिलती है, तो सेवा में स्वस्थिति और सेवा का बैलेंस। और ये इधर जो बोला था वैराग्य वृत्ति मर्ज ना हो जाए, साधनों के होते वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो, जगाओ,
पुराने स्वभाव संस्कार
पदार्थ से मुक्त हो जाएंगे। और वैराग अर्थात एक है अल्पकाल का सह वैराग, डेप्थ वैराग की जो डेप्थ है संगठित, जैसे स्मशानी वैराग जिसको बाबा कहते हैं ना, स्मशान में गए थोड़े देर देखा चिता जल रही है आग निकल रही है, एकदम संसार के प्रति वैराग वृत्ति होती है कि सबका यही हाल होने वाला है। और जैसे घर आते संसार के लोग तो संसार की बातें वापस चालू कर देते, वो भूल जाते हैं, वो वहीं का वहीं रह जाता है, वो अल्पकाल का वैराग। इसके लिए उस दिन क्या बोला मुरली ने, दुनिया की केस कैसी है अभी, होपलेस, बचने का चांस नहीं है, नमो प्रधान है, गंदी दुनिया है, रव रो नर्क है, छीछी दुनिया है,
संगम का समय है,
ये संगम का समय है, इसमें तुमको वैराग चाहिए, आंतरिक वैराग चाहिए, आंतरिक। देखो दिखाने की तो बात है नहीं कि हम वैरागी है, आंतरिक अनासक्ति संसार से सब कुछ होते हुए भी प्रस्ती न्यारापन में पंचे मुक्त, लास्ट हफ्ते में था ना, तो
सुख शांति की मांग है दुनिया में,
संसार में सुख शांति की, संसार की आत्मा प्यासी है, उनको उनकी प्यास कौन बुझाएगा, जो उससे मुक्त है उस प्यास से, या जो भरपूर हो गए, जो हम यहाँ बैठे वही उनकी प्यास बुझा सकता है। सकाश द्वारा किसी भी रीति से
सेवा में सबको वैराग दिलाना, ये भी अभी
उसके लिए, तो हमको हमारा वैराग की स्टेज बहुत ऊपर चाहिए,
इतना चाहिए
दूसरों को वैराग दिलाने के लिए। कोई विकार में जा रहा है व्यक्ति, उसको विकार से छुड़ाना है अभी हमको। अब विकार का आकर्षण संसार में सबसे ज्यादा आकर्षण है, उससे ज्यादा और कोई आकर्षण नहीं है, वो ऐसा आकर्षण है ऐसा आकर्षण है कि उसके सामने कुछ नहीं, तो उस आत्मा को भी उस विकार से मुक्त करना दृष्टि से, ये तो बहुत बड़ी स्टेज है। उसके लिए प्योरिटी की पावर बहुत ज्यादा चाहिए।
और ईश्वरीय आकर्षण का चेहरा जो आज की अव्यक्त मुरली में भी है,
अलौकिक तुम्हारी जो झलक होनी चाहिए उससे अविनाशी खुशी, अविनाशी सुख और शांति की झलक दिखाई दे। बाप से जो प्राप्ति हुई है उसका चेहरा और उसका दर्पण बन जाए, आईना बन जाए आज की मूर्ति का। और क्या था स्लोगन?
परमात्मा प्यार का था ना, जो
परमात्मा प्यार की निशानी है असंभव को संभव कर देना। परमात्मा प्यार में इतनी शक्ति है कि कोई भी असंभव हो, कोई भी असंभव, चाहे पुरुषार्थ के बारे में कोई भी पॉइंट हो, वो परमात्मा प्यार भी है। उस दिन का महावाक्य कितना सुंदर था, मीठे बच्चे प्यार है तो
प्यार है, प्यार है तो
एकरस, बाप का प्यार है तो याद एकरस है, और यदि याद एकरस है तो बाप का प्यार मिल जाएगा, कनेक्शन है पूरा, प्यार है और प्यार की निशानी है एकरस, और याद यदि एकरस है तो प्यार मिलता रहेगा। एक है दिखावे का ज्ञान योग, एक है दिखावे के लिए ज्ञान में चलना, एक है आंतरिक रुचि से चलना, एक है दिमाग से चलना, एक है दिल से चलना। एक बार वो चक्रधारी बहन ने अनुभव सुनाया था ना, चक्रधारी बहन बाबा के सामने गई और बाबा अव्यक्त तो बापदादा से बोला, बाबा मैं जब आपको याद करती हूँ तो मेरा दिमाग भारी हो जाता है। चक्रधारी बहन ने अव्यक्त तो बाबा से कहा, बाबा जब मैं आपको याद करने बैठती हूँ योग में तो मेरा दिमाग भारी हो जाता है। तो बाबा ने इतनी उसको बहुत दृष्टि दी और कहा, अच्छा बच्ची दिमाग भारी हो जाता है, अच्छा बच्ची दिमाग भारी हो जाता है बाप को याद करने से। तो उसको अंदर से एकदम क्लिक हुआ कि मैं दिमाग से याद कर रही हूँ बाप को। उसको रियलाइजेशन हुआ कि मैं जो कर रही हूँ योग वो दिमाग का कर रही हूँ। अरे दिल से बाबा को याद करने से तुम्हारे दिमाग, बाबा ने तीन बार रिपीट किया, अच्छा बाप को याद करने से दिमाग भारी होता है तुम्हारा, बाप को याद करने से दिमाग भारी होता है। तो उसको एकदम से अंदर स्ट्राइक हुआ कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, अरे बाप को याद करने से तो दिमाग तो हल्का होना चाहिए। तो दिल से याद करना, दिल से मतलब आर्त पुकार जैसे निकलती है ना कोई भक्त, जैसे द्रौपदी का दिखाया ना पहले, किसको किसको बुलाया, इसको बुलाया, उसको बुलाया, उसको बुलाया, उसको बुलाया, और अंत में उसको पता चला कि कोई मेरे काम का नहीं है। तो हृदय से एकदम कृष्ण को याद किया, हे गोविंद, एकदम आंतरिक पुकार, आर्त पुकार कहते हैं जिसको, कि बस अब वो ही सब कुछ है। वो जो पुकार है, बाबा ने कहा ना ये दिल का सौदा है, जबान का सौदा नहीं है। मेरा बाबा के नारे तो बहुत लगाते हैं, उससे कुछ होता है क्या? बाबा तो आता ही नहीं है। माता है, मेरा बाबा कहती है, रोती भी है इधर, और मेरा बाबा भी कहती है, बाबा कहते हैं मेरा बाबा कहो तो सारी मुश्किलें ये दूर हो जाएगी, मेरा बाबा कहो तो बाप हाजिर है, अभी मेरा बाबा दिन रात चिंतन कर रहे पर आ ही नहीं रहा है।
सारे खजाने
दिल से मतलब आर्त पुकार, जिसमें ये रियलाइजेशन हो गया कि इस संसार का कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता, ये सब व्यर्थ है, यहाँ के आधार तिनके का सहारा भी नहीं, तिनका तो भी किसको सहारा दे सकता है, ये तो उतना भी नहीं कर सकता। कुछ काम के नहीं है संसार कोई भी, केवल वो एक ही सहारा है, एक बल और एक ही सहारा। पर ये बाहर झाड़ के पत्ते तालियों का आकर्षण बहुत ज्यादा
है,
वो थोड़ा बहुत आधार देते हैं ना, अच्छा लगता है वो खींचते है। अच्छा और क्या बोला?
कारण रूपी
निगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव में बदलो। और एक बहुत पावरफुल वरदान था, स्लोगन था, हाँ ये वाला, लानी और डिस्टर्बेंस को क्या करना है, सहन करना और निश्चित करना। दो शब्द है उसमें, एक है ग्लानी और एक है डिस्टर्बेंस। ग्लानी अर्थात संसार के लोग हमारी ग्लानी कर रहे हैं, ग्लानी जब होती है तो गुस्सा आता है ना, हमको ऐसा बोलते हैं। और सबसे ज्यादा अगर पवित्रता के ऊपर कोई ग्लानी करे तो सबसे ज्यादा गुस्सा वहां आता है। हाँ मतलब अगर पवित्रता पर लांछन लगाया जाता है, कलंकित किया जाता है, किसी के साथ में जोड़ा जाता है या फिर बदनाम किया जाता है, कुमारों के जीवन में सबसे ज्यादा विघ्न ये बड़ा, सबसे टॉप मोस्ट लेवल का विघ्न ये है, बाकी सारे विघ्न छोटे छोटे ये ऐसा ऐसे करता है, ये उनके इनके साथ है, ये जो बातें है ना ये सबसे ज्यादा दुख देती है आत्मा को। ऐसा लगता है मेरे बारे में ऐसा का क्रोध भी आता है उसमें, क्रोध आता है बहुत। तो ग्लानी और फिर दूसरी है डिस्टर्बेंस की बात है, एक ये तो ग्लानी है, फिर बाकी दूसरी भी बहुत प्रकार की ग्लानी है, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, किसी को दोष देना इसके वजह से ये हुआ, ये नहीं होता तो वैसे होता था।
निर्दोष दृष्टि, जैसा बाप निर्दोष,
निर्दोष दृष्टि एक बहुत बड़ी साधना है।
नाराज नहीं होते बाप,
बाप किसी पर भी नाराज नहीं होते, बाबा किसी पर गुस्सा नहीं करते, बाबा किसी पर जैसे वो गुरु लोग है ना शाप देते हैं, तो बाप किसी को शाप नहीं देते, ना गुस्सा करते ना नाराज होते हैं,
शिक्षा देते हैं।
बाबा तो सुधारते हैं, बाबा तो शिक्षा देते हैं, बाबा तो समझाते हैं, आत्मा समझ बाप को याद करो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। बाबा आए हैं सुधारने के लिए। तो निर्दोष दृष्टि, ड्रामा के हर एक्टर कैसा है, हर एक्टर केवल निर्दोष नहीं संपूर्ण निर्दोष, इस ड्रामा का हर एक्टर सारे 24 घंटे में एक बार, 24 घंटे में एक बार ड्रामा की सारी पॉइंट एक बार बैठ कर याद करती है। ड्रामा एक्यूरेट है, सर एक ड्रामा सत्य है, इस ड्रामा में कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, ड्रामा न्यायपूर्ण है, ड्रामा कल्याणकारी है, अकल्याण के पर्दे के पीछे कल्याण है, नुकसान के पर्दे के पीछे फायदा है, ड्रामा बाप को पसंद है तो तुम बच्चों को भी पसंद होना चाहिए, ड्रामा न्यायपूर्ण है, इसमें कहीं अन्याय नहीं हो रहा है,
ड्रामा में हर एक का अपना
अपना पार्ट है, किसी का पार्ट चेंज नहीं हो सकता है, ड्रामा फिक्स है, ड्रामा में नथिंग न्यू। आज भी बोला ना वृत्ति चंचल होने के कारण दो, क्यों और क्या, इसी से, और अचल रहने का साधन है एक, नथिंग न्यू, नथिंग न्यू ही क्यों क्या को समाप्त करेगा बाबा ने कहा पार्टियों से मुलाकात, तो नथिंग न्यू की भी स्मृति, ड्रामा रिपीट हो रहा है, ड्रामा के पुनरावृत्ति का ज्ञान कि जो हो रहा है रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, वो भी वो कल्याणकारी। तो ड्रामा की ये सारी ड्रामा में एक मूल्य में बाप का दोष न रावण का दोष, न बाप का दोष न रावण का दोष, इसमें किसी का दोष नहीं है, तुम वापस वैसी भक्ति करोगे, वापस तुम शास्त्र पढ़ोगे, वापस तुम भगवान को सर्वव्यापी करोगे, खुद भी भटके और मुझे भी भटकाया, ना तुम्हारा दोष ना रावण का दोष ना बाप का दोष। तो निर्दोष दृष्टि से हर आत्मा को, हर आत्मा के साथ जो कुछ हो रहा है वो उसके ही कर्म अनुसार हो रहा है,
वो कर्म कहानी
सब कुछ बहुत सूक्ष्म बात है। चलो और क्या बोला, बाप समान, बाप समान अव्यक्त अविदेही और अव्यक्त बनना, ये ही क्या है, ये अव्यक्त पालना का सबूत है, और आपसी आपसी बंधों में निर्माण बनो, माया से निर्भय बनो, क्यों, क्योंकि माया पेपर टाइगर है, क्योंकि माया शक्तिहीन है, माया कुछ है ही नहीं, जैसे कोई एक कवर पहन लेता है ना, मास्क पहन लेता है और डराता है, पर अंदर में मनुष्य है, शक्तिहीन है, परंतु माया तो मूर्छित हुई पड़ी है बाबा ने कहा आज, पर कोई कोई बच्चे मूर्छित को देख मूर्छित हो जाते, मरे हुए सांप को देख मूर्छित
होता है, तो
साहब फिर भी वो तो अच्छे अच्छे भी हो जाएंगे, पता थोड़ी है उम्र आए,
हाँ यहाँ जैसे बारिश में जब
मरेंगे तो
और विकराल रूप धारण करेगी माया, माया अर्थात जहाँ जहाँ माया शब्द आते हैं वहाँ कट कर देह अभिमान डालना, क्योंकि माया कहने के बाद में भी हाथ में ऐसा कुछ आता नहीं, माया क्या देहभान या विकार या काम विकार ऐसे डालो वहाँ पे, तो वो शब्द को, वो जो रचना है वाक्य की, उसको देखने की हमारी दृष्टिकोण थोड़ी बदलता है, कि ये काम विकार क्या है, कुछ है ही नहीं, शक्तिशाली हम है, वो शक्तिहीन है,
माया सोचेंगे तो लगे उसमें,
माया सोचते ही ऐसा लगता है कोई व्यक्ति है,
उसमें बहुत सारी चीजें हैं,
उसमें जैसे वो ये है ना, ये एक कमरे में अंधेरा है 1000 साल से, हमने सोचा कि इस अंधेरे को बाहर निकालना है, क्या ये अंधेरा मेरे से इतना शक्तिशाली है, हम गए तलवार लेकर अंधेरे को बाहर निकाल रहे, अभी अंधेरे को हमने एक व्यक्ति समझा है कि जो बहुत शक्तिशाली है और जिसने 1000 साल तक इस कमरे में कब्जा करके रखा है। अभी 1000 साल तक उसने कब्जा किया, तो हमको और शक्तिशाली बनना पड़ेगा। पर वास्तव में अंधेरा कुछ है ही नहीं, प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है। वहां प्रकाश रख दो, अंधेरा आते ही खत्म। वो कुछ था ही नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं है।
माया कुछ है नहीं,
अस्तित्व ही नहीं है। अगर हम संपूर्ण ज्ञान स्थिति में स्थित है, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित है, तो वहां पर माया का अस्तित्व नहीं है। माया कमजोरी है। एक मुरली में गाता, कर्मेंद्रियों की चंचलता ही माया है, देह अभिमान ही माया है, विकार ही माया है, रावण ही माया है। रावण क्या है? रावण का ज्ञान भी बहुत आवश्यक है। ये देह भान जो आ रहा है बाद में, किसी की तरफ देह की तरफ आकर्षण भी माया है। तो ये जो देह की तरफ आकर्षण, ये कुछ है नहीं, ये शक्तिहीन है, ये मूर्छित हुई पड़ी है, ये माया, इसी को माया कह रहे हैं। ये स्मृति की कमी है हमारी, उस समय विस्मृति हो रही है। किसी की देह की ओर आकर्षण जा रहा है, किसी के रूप की ओर आकर्षण जा रहा है, वो ही माया है। माया समझ में ही नहीं आती ना, ये माया है। नाम रूप में लास्ट हफ्ते में था ना, लास्ट हफ्ते का पूरा एक मुरली उसके पास था। नाम और रूप, नाम तो छोड़ो, सबसे बड़ी बीमारी 10% नाम, 90% रूप, सौंदर्य, वो सबसे ज्यादा खींचता है। नाम मतलब कोई बड़े पोस्ट पर है, उसका बहुत नाम है, उसके राम में फंसना,
लौकिक भौतिक व्यक्त माया और मानसिक
और नहीं। वो आज का रुको, कल एक हफ्ते का
ब्राह्मण के बाद में एक आपको संस्कार करने के बारे में
बोल दिया ना। आत्मा को कौन सी है? तो शरीर है।
प्रबंध रखते हैं बहुत, बार बार अस्सी के बाद जाते हैं दवाई दिया उनको, ठीक है।
और भी कोई पॉइंट है अच्छी? बाबा ने एक और एक बात अच्छी कही, मुख्य केवल 4 धर्म है, देवी देवता, इस्लाम, क्रिश्चियन और बौद्ध। हिंदू धर्म का नाम ही नहीं दिया, हिंदू धर्म ही नहीं है, भगवान उवाचक, धर्म खाली 4 ही है। एक मुरली थी ना अभी, खाली 4 ही धर्म है, तो बाकी ये जो है सारा विस्तार संसार में आदि सनातन देवी देव, आदि सनातन धर्म या वैदिक धर्म, ये तो है ही नहीं। मुख्य धर्म 4 ही बताए बाबा ने, और वो भी उसमें से 2 तो उधर के, बाहर के, भारत के। भारत का एक ही मुख्य धर्म है बुद्ध और देवी देव, जिसका किसी को पता नहीं। और यहाँ से जन्म लेके जो जाएंगे
वो बच्चे
और उनको ज्ञान योग के बाप के और किसी बात में मजा नहीं आएगा। बोला
तो बोला तो इसमें जो जैसे सब गए हुए हैं, जो बड़ी दादी हैं या मम्मा है, तो मम्मा भी ज्ञान में होगी।
हो सकती है, नहीं हो नहीं, नहीं। एडवांस पार्टी वाले जरूरी नहीं वो ज्ञान में है, वो पर निमित्त बनेंगे कई आत्माओं को ज्ञान में लाना चाहिए। वो खुद ज्ञान में हो ना हो, ना होने की संभावना ज्यादा है, हो भी सकते हैं, परंतु ना होते हुए भी कई आत्माओं को ज्ञान में लाएंगे।
पुराने दिन में रहते हुए इतने सारे जो अपने बीके की मान मर्यादाएं हैं, जो नियम स्वयं है,
उनके सब में उनमें वो सारा सहज रूप से रहेगा,
खाना पीना ये वो सब चीजें
संभव नहीं होगा ना दुनिया में।
दुनिया में संभव नहीं है, परंतु वो जिस वो जो आत्माएं होंगी ना, थोड़ी संसार से दूर होगी, हटके होगी, शायद संभव नहीं है, संभवतः वो संसार के उस मायावी प्रभाव में नहीं होगी। उसके माँ बाप भी बहुत अच्छे घरे माँ के घराने के होंगे, फिर भक्त टाइप होंगे, उस तरीके से हो सकता है।
उनकी दृष्टि का भी तो प्रभाव होता होगा ना,
प्रभाव तो होगा ही ना।
तो कोई चीज को देखेंगे दुनिया की चीज है,
वो आत्माओं को खींचेंगी अपनी, क्योंकि उनमें प्यूरिटी का बल है, तपस्या जो की
वो आत्माएं तो संपूर्णता को प्राप्त कर गई है, तो फिर ज्ञान में कैसे आएंगे? वो तो ज्ञान में आएंगे,
संपूर्णता को ब्रह्मा के अतिरिक्त और कोई भी प्राप्त नहीं हुआ। अगर संपूर्णता की और एक परिभाषा है, उस परिभाषा के अनुसार, संपूर्णता की उस कर्मातीत की डेफिनेशन के अनुसार इवन ब्रह्मा भी प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि उसमें बाबा ने कहा है एक कर्मातीत की कई डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन है कि जब आत्मा सूक्ष्म शरीर के बंधन से भी मुक्त होकर परम धाम में चली जाती है, वो संपूर्ण है। तो आत्मा है संपूर्ण केवल परम धाम में,
परम धाम में,
ये उसकी अल्टीमेट डेफिनेशन। बाबा संपूर्ण है, देह चला गया पर सूक्ष्म शरीर का बंधन है, परंतु संसार की तुलना में वो संपूर्ण है। मम्मा उस रीति से नहीं है, एक ही बाबा ने कई मुरलियों में कहा गारंटी केवल एक की है। कई मुरलियों में आता है 84 जन्म तुम सब ने लिए है पर गारंटी केवल एक ही है, बाकी और किसी की गारंटी पता नहीं कितने कितने लिए। गारंटी हर चीज में एक की है और किसी की गारंटी नहीं।
तो मम्मा के लिए तो कहते हैं कि मम्मा
कहने वाले भगवान नहीं है, मनुष्य है, ब्राह्मण कहने वाले बहुत कुछ कहते
हैं।
वो तो जैसे विश्व किशोर भाव उसके लिए भी कहते हैं ना, वो दो बातें कहते हैं उसके लिए, ये भी कहते हैं कि वो कृष्ण का बाप बनेगा और ये भी कहते हैं बाबा ने खुद बाबा की महावाक्य की है कि इसको नशा है कि ये कृष्ण का प्रिंस बनेगा, मतलब बेटा। ये भी बातें कहते हैं, वो भी कहते हैं कृष्ण का प्रिंस मतलब उसका बेटा, मतलब लक्ष्मी नारायण का फर्स्ट चाइल्ड, उसको उसको भी अपना ये नशा था ना। नहीं आगे के लिए, आगे कौन क्या बनेगा, सतयुग के, सतयुग की बातें चल रही
है। इसमें एक बात है, जो एडवांस पार्ट में जो जाते हैं उसमें तो ज्ञान नहीं होना चाहिए,
नहीं होना चाहिए, वही मैं कह रहा हूँ 90% उनमें ज्ञान नहीं होगा।
वो देवताओं को जन्म दे,
वो देवताओं को जन्म देंगे,
वही ज्ञान रह जाएगा, फिर उसके बच्चे को
नहीं रहेगा, वो ज्ञान में नहीं आएगी, मोस्टली नहीं आएगी, वो है संसार में है, वो संगम युग के एंड तक रहेगी और उन्हीं के द्वारा फिर देवताओं को जन्म, वो क्या होगा, देवताओं को जन्म लेगी, ऊपर जाएगी और फिर वापस देवताओं के बच्चे बनेगी।
एडवांस पार्टी कोई ऐसा टापू है जहाँ वो संसार से कटा हुआ है?
सारे नहीं, सब अलग अलग जगह, एक जगह नहीं है वो, टापू की बात नहीं है, रहस्यमय टापू है, इस तरह का नहीं है,
बरमूडा
ट्रायंगल से
जहाँ जाते
वही
वही मैं बोला ना, दोनों बातें उसके लिए प्रचलित है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, या दोनों भी हो सकता है साथ साथ।
उसका जन्म तो अधिकार से होगा और वो श्री कृष्ण को जन्म देगा फिर चला जाएगा।
हाँ वो और वापस आएगा और वापस अपने टाइम पर आएगा थोड़े समय के बाद। तो दोनों बातें संभव है। थोड़ी थोड़े समय के बाद जाएंगे, ये सृष्टि संपूर्ण खाली नहीं होगी कभी,
पालना तो एक बहुत, तो बाबा ने भी बोला है ना
खाली नहीं होगी।
देवी देवताओं को एक्चुअली पालना की ज्यादा, जो फर्स्ट जनरेशन की बात कर रहे हैं ना खाली अपन, फर्स्ट जनरेशन वालों को ज्यादा पालने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा सा बड़ा हो जाएंगे बस,
बहुत समझदार
वो तो, बहुत समझदार, उनको वजीर की जरूरत नहीं, उस दिन था ना, उनको एडवाइजर की जरूरत नहीं, मिनिस्टर की जरूरत नहीं है, वो समझदार होते, बहुत बुद्धिमान होते हैं।
युग का जो बनाएंगे वो तो पुराने जो आदमी रहेंगे एडवांस वाले वही बना के जाएंगे
क्या वो? नहीं वो तो देवता खुद बनाएंगे
डायरेक्शन,
बाबा ने लास्ट
टाइम नहीं लगता,
उनको टाइम नहीं लगता घर बनाने को, ये करने को, वो करने को, उनके पास दास दासियां बहुत होंगी ना, ज्यादा राजा रानी कम बनने वाले बहुत कम लोग
हैं। देख के जाएंगे वहाँ से ऐसे चलेगा।
एक मोड़ में बाबा ने बोला यहाँ के भी कुछ रहेंगे और जो बाहर के हैं रावण का भी कुछ रहेंगे,
रहेंगे ना, और दास दासी थोड़ा बहुत जिन्होंने ज्ञान सुना।
जो क्रिश्चियन धर्म में ये कहा जाता है जो वोट बनाते हैं और जो भी उसके जो अच्छे कर्म करते हैं उनको वोट में लेके उसको
नोहा की आर्क, आर्क ऑफ नोहा
कहने की बात है। साइंस भी उस प्रकार से जो वो भी कुछ रहेंगे जिसके आधार से जो विज्ञान का भी आगे के लिए
वो तो बहुत हाईएस्ट फॉर्म ऑफ विज्ञान रहेगा वहाँ पर, अभी का जैसा नहीं होगा। बहुत जो टैलेंटेड होंगे वो सारे वहाँ आएंगे, जिन्होंने थोड़ा बहुत जो ज्ञान में आगे थोड़ा सा सुन लिया वो आ जाएंगे ये बनाने के लिए। दास दासी तो
वही बनाने का कार्य शुरू से ही वो करेंगे।
हाँ मतलब वो एडवांस पार्टी वाले नहीं करेंगे, देवता खुद करेंगे।
साइंटिस्ट की जो सेवा अभी होती ना तो सत्व प्रधान बुद्धि बनेंगी वो साइंटिस्ट
वहाँ आ जाएंगे माहौल बनाने के लिए।
अभी जो
इंजीनियरिंग
सेवा हो रही
ऐसे थोड़े बर्फ बने हुए हैं, क्या
करेगा? चलो आज की मुरली पे आ जाओ। आज कौन किससे मिलने आया है?
विदेशी
बाप विदेशी बच्चों से मिलने आए हैं और बाबा को एक विशेषता देखते हैं। कौन सी विशेषता देखते हैं विदेशी बच्चों की? मेरे ही कल्प पहले वाले, मेरे ही कल्प पहले वाले बिछड़े हुए बच्चे व्यक्त कहाँ चले गए? भिन्न भिन्न देश, भिन्न भिन्न धर्म, नाम रूप, फिलोसॉफी, रहन सहन, जाति, सभ्यता, भाषा, परंपरा संस्कृति अलग अलग जहाँ चले गए वो वहाँ से निकलकर बाप और परिवार में आ पहुंचे, अपने असली स्थान पर आ पहुंचे, ये सबसे बड़ी विशेषता है।
बाप को खुशी है,
ये देखकर बाबा को खुशी है। तो बच्चे बाप का, बच्चे घर का श्रृंगार होते हैं। तो श्रृंगार कोई भी व्यक्ति और वस्तु अच्छा लगता है, अगर श्रृंगार नहीं है तो अच्छा नहीं लगता। तो बाप को भी बच्चों के श्रृंगार के बिना अच्छा नहीं लगता, बाप को सुना सुना लगता है। बच्चों के बिना फिर बाबा ने इंडिया में खेल का उदाहरण दिया। कौन सा उदाहरण दिया? जैसे कोई कवर करते है उसको ब्रेन टीजर, ये मेमोरी ट्रेनिंग में सिखाया जाता है ये सारी चीजें। बहुत सारी चीजें रखो कपड़े से कर दो, एक बार दिखाओ और फिर उसके बाद में पूछो किसको कितना कितना याद है, कौन सी वस्तु कहाँ कहाँ रखी है। तो वैसे ही भिन्न भिन्न फिलोसॉफी, भिन्न भिन्न रहन सहन में होते हुए भी बाप जो है जैसा है, छिपे हुए बाप को जिन्होंने पहचान लिया, वो वैसे कोटो में कोई आत्मा। ऐसे बच्चों को देखो, ऐसे बच्चों को देखो बाबा, ये उनकी बुद्धि की कमाल है, बुद्धि का खेल है। तो बाबा को ज्यादा खुशी होती है, हर्षित होते है बाबा, ऐसे बच्चों को इनाम भी देते। तो ये था पहला। नेक्स्ट,
कोटो में
कोई ये काम कर सकते, इस बुद्धि के इसमें पास हो सकते, सब नहीं हो सकते बाबा ने कहा। फिर बाबा ने पूछा कि बाबा को, बाप हर्षित होते ये सब देख के, बच्चों को ज्यादा खुशी होती है या बाप को ज्यादा खुशी होती है? तो खुशी किस बात की? पाना था तो पा लिया, इस नशे में जो रहते ये गीत गाते रहते, पाना था तो पा लिया।
उदासी में नहीं आएगा,
उदासी में नहीं आएगा। तो जो नशे में रहते हैं उनकी निशानियाँ फिर बाबा ने बताई, वो कभी उदास नहीं होंगे जीवन में। उदासी आई तो समझ लेना बाबा का प्यार कम हो गया किसी भी कारण से, या फिर उससे भी किसी भी कारण से अगर दुखी होते तो समझ लेना अपवित्रता है। डिप्रेशन का मेन कारण है अपवित्रता, कहीं ना कहीं श्रीमत का सूक्ष्म में उल्लंघन हो रहा है, तो समझ लेना दुखी, तो समझ लेना उदास। बाबा ने और भी एक बात कही, माया प्रूफ, जो इस नशे में रहते हैं, पाना था सो पा लिया, वो माया प्रूफ हो जाते हैं, उलझन उदासी से मुक्त हो जाते हैं। और आगे
खुशी नशा तो उसका चेहरा पर आता है।
तो बाबा ने आगे फिर इसके लिए कहा, विदेशी बच्चों को एक लिस्ट है। कौन सी लिस्ट है कि उसमें तीन चार बातें बताई है। सबसे पहले तो उनको भारत वाले जब देखेंगे तो सोचेंगे इन्होंने पहचाना हमने नहीं पहचाना,
इन्होंने पा लिया,
इन्होंने पहचाना हमने नहीं पहचाना। दूसरा ये सोचेंगे कि इन्होंने, वो पश्चाताप करेंगे कि हमने भाग्य को गवा दिया, खोया, खो दिया, भाग्य को खो दिया, ये सोचें। और फिर बाबा ने वो दिल्ली की कॉन्फ्रेंस है ना, उसमें बताया क्या करोगे, क्या प्लानिंग बनाओगे। तो उसमें फिर कहा कि तुम्हारा चेहरे को देखकर, तुम्हारे चेहरे से क्या दिखाई दे, अविनाशी खुशी, अविनाशी सुख, अविनाशी शांति की झलक दिखाई दे, और बाप से जो प्राप्ति हुई है उससे आईना बन जाए चेहरा तुम्हारा। देखा पहला हाँ, ये भी एक पॉइंट रही है कि तुम ऐसा हो कि बाप ये चाहते हैं कि विश्व के सामने एग्जांपल रखे। तो उसने चेकिंग की पॉइंट बताई, क्या मैं ऐसा उदाहरण बना हूँ कि बाप जिसको विश्व, जिसको विश्व के सामने रखे,
आपको आगे रखे,
आप विश्व के आगे बाप
रखे।
फिर है उसके बाद में जैसे लाइट आकर्षित करती है, सेकंड पेज, जैसे लाइट आकर्षित, वैसे लाइट माइट स्वयं के स्वरूप से विश्व की आत्माओं को बाप की तरफ आकर्षित कर। फिर वो माया की बात बताई, वो कागज का शेर है, माया कागज का शेर है, माया कुछ है ही नहीं, माया शक्तिहीन है, माया मूर्छित है। आगे बोला एक जगह, माया अनुभव भी बनाती है, माया आगे बढ़ाती है, इसके लिए घबराओ नहीं। घबराते हो तो वो और विकराल रूप धारण करते। फिर वहाँ उदाहरण दिया, मां कोई ये पहन लेता है तो डराता है,
अंदर मनुष्य
है फिर भी डराता है ये। फिर उसके बाद में 108 में कितने आएंगे, नहीं वो बाद में
108 में
कितने आएंगे, उसमें बाबा ने वही कहा, निश्चय है निश्चय है तो विजय है। लक्ष्य को कमजोर नहीं होने दो, लक्ष्य को ऊंचा रखो। फिर उसके बाद में स्थान का भी महत्व है, बाबा ने कहा। उसके बीच में लाइट चली गई तो बाबा ने कहा जैसे लाइट आना जाना, मतलब ये जितना जल्दी चली गई वैसे एक सेकंड में अशरीरी हो सकते हो। एक सेकंड के में देह के भान से परे, जैसे कपड़े उधारने, कपड़े पहनने और उतारने का, जैसे देह भान के कपड़े को एक सेकंड में उतार के अशरीरी हो सकते हो। अगर टाइट कपड़े हैं तो सहज नहीं, डिफिकल्ट है। इसके लिए मनसा संकल्प में भी अटैचमेंट ना हो। इसके लिए मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में अगर अटैचमेंट है तो डिटैच नहीं हो सकते,
बंधन मुक्त चाहिए।
मनसा में भी अटैचमेंट के बंधन से मुक्त, हाँ टाइट कपड़े,
बंधन मुक्त चाहिए।
मनसा ये बहुत चिंतन का विषय है,
मनसा
कहाँ कहाँ अटैचमेंट है, किस किस व्यक्ति में, मनसा में कहाँ कहाँ अटैचमेंट है, वाचा में अटैचमेंट कहाँ कहाँ है। वाचा में अटैचमेंट किसी को बहुत ही भाषा नहीं देना है जब तक माइक हाथ में नहीं आता तब तक शांति नहीं मिलती है सबसे बड़ा एक चक्का है वो भाषण देना भी कि मेरे को ऑडियंस चाहिए और हाथ में माइक चाहिए, पता नहीं कब मिल जाए चांस तो भाषण पूरा निकाल दो, चाहे वो कितना समझ रहा है पता नहीं, सुनने इंटरेस्टेड है या नहीं है, पर हमको तो बोलना ही है, जो बोलना है वो बोलना है। तो वाचा मनसा वाचा कर्मणा, मनसा आएंगे कर्मणा, कर्मणा में अटैचमेंट है। कोई सेवा विशेष करनी, अगर हम किसी ने हमको कोर्स कराने की सेवा दी तो बहुत खुशी होती है। अगर बोला अभी चलो ये झाड़ू लगा, ये बड़ा ये लगता है, ये भी कोई सेवा है। ज्ञान सुनाने की सेवा ज्यादा पसंद आना, स्थूल सेवा कम पसंद आना, सेवा सेवा है। हजार आत्माओं के सामने भाषण देने से जो पुण्य है वो झाड़ू लगाने से भी वही पुण्य है, बाबा ने बोला है ना, वही पुण्य है। वृत्ति क्या है, किस भाव से कर रहे हैं। अगर भाषण देते समय अहंकार है कि मैं बहुत बड़ा स्पीकर हूँ, मैं बहुत अच्छा भाषण करता हूँ, जीरो, मैंपन है, तो जहाँ मैं है वहाँ मैं नहीं, भगवान वाच है, जहाँ मैं है वहाँ मैं नहीं। फिर संबंध संपर्क में ये तो सबसे ज्यादा है अटैचमेंट, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति अच्छा लगता है उसी के साथ सेवा करने की इच्छा होती है, वो अगर है तो अच्छा लगेगा,
उमंग बना रहेगा,
वो नहीं है तो फिर एकदम चेहरे का जैसे रंग उतर जाएगा, पता नहीं वो आ गया एकदम खुशी, सूक्ष्म में सहारा बना के रखे एनर्जी। वो जो किताब है ना छोटी, उसमें ऐसे 16 पॉइंट्स लिखे हुए हैं कुमारों के लिए, कहाँ कहाँ कुमारों का अटैचमेंट होता है, बहन और भाई उसके लिए बहुत सारी पॉइंट लिखी है। जैसे छोटी छोटी बातें बहाने बनाएंगे एक दूसरे को मिलने के लिए, और नाम लेंगे सेवा का, सेवा के बहाने बार बार मिलने की कोशिश करेंगे, नाम सेवा का पर एक दूसरे से मिलने के लिए, छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी बातों के लिए फोन करना, छोटी छोटी बातों के लिए बार बार बुलाना या फिर टोली भेजना, ये सब मोह के रगे बताई या फिर छोटी छोटी बातों में एक दूसरे से नाराज हो जाना, एक भाई एक बहन, और फिर नाराज होने के बाद वो उसको मनाएगा, वो उसको मनाएगा, फिर खातरी करना, और फिर उसके वजह में इसमें टाइम और एनर्जी वेस्ट करना, ये उदाहरण है सर ब्राह्मणों के, हाँ वही किताब में, हाँ वर्कशॉप से ही है, स्पार्की है, छोटी सी किताब है, पवित्रता को रब्य भी आई है, इतनी छोटी है, कुछ पन्ने हैं बस, पर बहुत सूक्ष्म पॉइंट है उसमें, कुमारों के प्रति बाबा के महावाक्य, देह को टच किया तो भी महा महा महापाप, इससे नजर और संकल्प से, हाथ से नहीं, नजर और संकल्प से देह को टच किया तो महा महा महापाप है, महापाप के भागी बन जाओगे, ऐसे सब बात है। बाप की ग्लानी की अगर तुमने किसी भी कारण से, बाप ज्ञान की अगर ग्लानी की, बाप की ग्लानी की, जैसे गंधर्व विवाह,
हर टाइम बीच में बाप चाहिए,
हाँ वो तो उचित स्टेज है,
यही
या फिर कि जिससे मोह है उसकी तारीफ करना दूसरों के सामने की, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा, ये भी मोह की रगे है, या फिर दोनों मिलकर आपस में किसी तीसरे की ग्लानी करना, ये भी मोह है। घृणा एक दूसरा रूप है उसका, नाम रूप में फंसने का। एक है नाम रूप में फंसना मतलब इस तरह से, और एक है किसी के प्रति नफरत, घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, ये सब भी नाम रूप में फंसना ही है। उसका एक्सट्रीम पोल है, दोनों एक ही चीज है,
एक नेगेटिव
एक पॉजिटिव एक नेगेटिव,
दोनों ही खतरनाक।
वो तो एकदम संसार के टाइप, ये वाला कम रहेगा ब्राह्मणों में, नेगेटिव नफरत ये थोड़ा कम रहेगा, ये ज्यादा रहेगा। अच्छा ही ज्यादा खींचती है ना, किसी की स्थिति बहुत अच्छी है तो उस स्थिति में मोह, ये भी एक पॉइंट है। जिसकी स्थिति बहुत अच्छी है, सबको यही सुनेंगे इसकी स्थिति बहुत अच्छी है, अरे है ठीक है,
कहीं नहीं फंसने जाना, उधर ना उधर
फंसना नहीं है,
ठीक होते
ठीक बोलना अलग बात है,
अगर बोलते जाना नहीं बोलना है, एक बार बोल दिया
बहुत लोगों की है, पर इसकी सबसे अच्छी, इसकी स्थिति बहुत अच्छी। दादी जानकी भी बताती है ना, एक बार कि बाबा को सुनाया, एक किसी का कोर्स कराया दादी ने, बहुत यंग थी जब, 25 साल 30 साल की, किसी का कोर्स कराया, ब्रह्मा बाबा को बताया, बाबा ये बच्ची, ये लड़की, ये भाई का मैंने कोर्स कराया, भाई बहुत अच्छा है, ये भाई को ना बिल्कुल एकदम तीर लग गया, ये ना एकदम ज्ञान में चलेगा। तो बाबा एकदम गंभीर, बाबा बोलते बच्ची तीर उसको लगा या तुमको। ठीक है, किसी के लिए महिमा अगर की जाती है ना तो समझ लेना कुछ तो वहाँ गड़बड़ है थोड़ी। अनावश्यक महिमा, अनावश्यक अमर्यादित सुख देना किसी को,
उसको संभाले नहीं अगर
किसी को अमर्यादित सुख देना, अमर्यादित समय पर किसी को अपने रूम में, कमरे में, किसी स्थान पर बुलाना, अमर्यादित समय पर बात करना, अमर्यादित स्थानों पर बात करना, एकांत में बात करना लंबे समय से किसी स्त्री या पुरुष, चाहे वो कोई कैसा भी, कोई भी बात हो, वहाँ पे अटैचमेंट है। जबकि युधिष्ठिर को महाभारत में पूछा गया है कि
करे या भाई भाई भी करे तो भी,
भाई भाई कम, बहने भाई ज्यादा, भाई भाई माया आने के चांसेस कम है, वैसे तो वो उसमें भी आ सकते हैं, वो भी व्यर्थ होता है, तो व्यर्थ होता है, यहाँ विकार की बात चल रही है, व्यर्थ वो एक अपनी व्यर्थ की अपनी एक अलग सब्जेक्ट है, यहाँ काम विकार की खाली बात चल रही है, ओनली ओनली काम विकार, बाकी कुछ नहीं। युधिष्ठिर को पूछा गया है, जब उसकी माँ बैठी है कुंती और वो बैठा है, क्या तुम्हारा मन काम विकार से मुक्त है? महाभारत में बोलता है आई एम नॉट श्योर, यहाँ तक परिभाषा है काम की, क्योंकि आत्मा ने जन्म जन्म भोगा है इस शरीर को, जन्म जन्म वासना के संस्कार उसमें है, एक बार भी आत्मा अगर काम विकार में जाती है वो उसके जो संस्कार इतने सबकॉन्शियस माइंड तक चले जाते हैं, वो भी एक सुख है ना, वो भी उसमें भी अतीन्द्रिय सुख का कुछ क्षणों के लिए अनुभव होता है, वो संस्कार आत्मा में है और वही देह की तरफ खींचता है, पर क्योंकि इस समय ज्ञान में है तो बहाना होगा सेवा का, और उस आत्मा के साथ ही सेवा करनी है, वो ही अच्छा लगेगा, वो नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। उसकी जो बातें की है वो घंटों याद करते बैठना, उसने ये कहा फिर हमने ये कहा, फिर ऐसे हुआ, फिर वैसे हुआ, फिर हम यहाँ साथ गए थे, हम वहां साथ गए थे, फोटो रखना साथ का, हम दोनों साथ, मोह सकल व्याधिन कर मूला। संसार में मोह ही सकल व्याधिन कर मूला, तुलसीदास ने ऐसे नहीं लिखा है। चलो वो वहाँ हो गया, फिर उसके बाद में नेक्स्ट पैराग्राफ, ये तो अटैचमेंट है, और कहाँ थे हम,
विदेशों की बात आ गई, लंदन की,
ये आश्चर्य विपन्न का हो गया, फिर उसके बाद में सब अलग अलग देशों को याद किया बाबा ने, लंदन को याद किया, लेस्टर को याद किया, गयाना को याद किया, हांगकांग को याद किया, कनाडा को याद किया, ऑस्ट्रेलिया को याद किया, मॉरिशस को याद किया, जर्मनी को याद किया, और वो जाम्बिया की कैपिटल क्या नाम है उसका, लुकासा, लुसाका, उसको भी याद
किया,
बुलवायो को भी याद किया, ये सारे देशों को बाबा ने याद किया। क्या क्या याद किया, किस चीज के बारे में? किसी ने मुझे कुछ दिन पहले, कोई एक भाई बता रहा था कि कैसी आत्मा है देवी देवता की यहाँ वहाँ चली गई, जैसे द्वापर त्रेता का अंत तो हुआ, भूकंप हुए, एक ही प्राकृतिक आपदा है, बाकी नहीं हुई उस समय, और वो जो भूकंप भी जो हुआ उसमें जन हानि नहीं हुई,
तो द्वापर,
द्वापर वाला त्रेता के अंत में जो भूकंप हुआ उससे देवताओं का विनाश नहीं हुआ, क्योंकि देवताओं ने पाप तो किए नहीं है, उनको दुख थोड़ी होगा, प्राकृतिक आपदा केवल जो महल थे वो टूट फूट सड़ जैसे बाबा कहते हैं वो ऐसे हो गया और उसमें फिर खंड जो एक ही था पूरा अनेक खंडों में विभाजित हो गया
सागर पानी और सागर।
हाँ वो अलग अलग खंडों में सात खंडों में संसार विभाजित हुआ धीरे धीरे इधर एशिया उधर यूरोप इधर अमेरिका इधर ऑस्ट्रेलिया इधर अफ्रीका ऐसे सात खंडों में संसार विभाजित हुआ। तो मोहन सिंगल भाई जी बता रहे थे कि जैसे त्रेता के अंत वाले देवी देवता कहीं आइलैंड में गए होंगे पिकनिक के लिए अभी पहुंच तो गए पर आते समय शक्ति खत्म हो गई तो वही रह गए उनका अपना चिंतन होगा कि पुष्पक विमान से गए अभी चला नहीं वापस आने की शक्ति नहीं है तो वही बच गए और फिर वहां से उनका जैसे ऑस्ट्रेलिया में गए तो वही अभी कुछ आत्माएं ऑस्ट्रेलिया से निकली ना देवी देवता भिन्न देश धर्म
वही
ये बाबा ने तो कहा नहीं है कल्पना है लॉजिक ये भी एक हो सकता है ये भी एक हो सकता है। दूसरा एक है कि बीच में द्वापर के बीच में या कलयुग के बीच में कोई देवी देवता धर्म की आत्मा है जो भारत में थी किसी विभिन्न नाम रूप देश में वो उधर चली गई और उसके बाद में तीन चार आत्माएं चली गई और फिर पुनर्जन्म लेते लेते वही आ गई संगम युग पर तो बीच में गई कुछ है कि बीच पहले से चली गई कोई है बीच में चली गई पर अंत में सब इस समय यहाँ
ये भारत के लोगों को ब्रिटिश लोग नहीं लेकर
और दूसरा एक बहुत सोचने का विषय है कि बाबा ने क्या कहा इंग्लैंड को आज प्लान सबसे पहले सेवा वहां चालू हुई ना लंदन विश्व की सबसे ज्यादा अत्याचार करने वाली आत्मा है ब्रिटिश जिसने सारे विश्व पर राज्य किया भारत पर भी राज्य किया फ्रांस पर भी राज्य किया अमेरिका भी राज्य किया सब जगह अत्याचार किया है ब्रिटिशों ने अंग्रेजों ने जितना अत्याचार संसार में किया है उतना और किसी आत्माओं ने नहीं किया और परमात्मा की प्रत्यक्षता का पहला केंद्र वो सूक्ष्म राज है इसके पीछे कि सबसे पहले सेवाएं वहां चालू हुई जहाँ की आत्माओं ने भारत पर सबसे ज्यादा अत्याचार किया 150 साल 200 साल
पहले उपकार
अपकार किया उन्होंने उन पर सबसे ज्यादा पहले उपकार ये कितना सूक्ष्म है। और दूसरा ऐसा ही एक दूसरा एक पॉइंट है जब इस्लाम धर्म की स्थापना हुई 7वीं शताब्दी में उसके 200 साल के बाद ही इस्लाम मोहम्मद चला गया मोहम्मद के बाद में सब उन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार चालू किया और सबसे पहला हमला जो किया हुआ है इस्लाम ने वो है सिंध में हैदराबाद सिंध में सिंध में सबसे पहले इस्लामिक इन्वेजन इन इंडिया क्योंकि वही रूट है ना भारत में आने का तो सबसे पहला अटैक भी सिंध में ही हुआ है सबसे ज्यादा अत्याचार ये सब और वहीं पर परमात्मा प्रत्यक्षता हुई जो ज्ञान है वो वहां मिला। दूसरी और एक बात है कि भगवान जो आया वो स्वतंत्र भारत में नहीं आया परतंत्र भारत में प्रवेश था भगवान की और वो भी भारत अभी जो भारत है उस भारत में नहीं पाकिस्तान मैंने वहां है। तो बाबा ने आज क्या कहा लंदन को प्लानिंग बुद्धि है देखा ना लंदन को प्लानिंग बुद्धि मॉरिशस की संख्या में बहुत ज्यादा है और फिर गयाना सबसे फास्ट क्वालिटी उसके बाद हांगकांग में कुछ गुप्त आत्माएं हैं उसके बाद में अपना कनाडा में कोई एक बाहर आ जाए तो उसको देख के सब आ जाए कोई एक अनुभव सुना है तो उसका अनुभव सुन के सब आ जाए
मारिया को याद
किया ज्ञान त्याग तपस्या की ड्रेस स्टेज पर आने के लिए कहा वो ज्ञान सरोवर ज्ञान सरोवर में कोई है मैंने देखा नहीं देखा भी होगा पर पता नहीं यही है करके वो देखा है अभी नहीं है
पहले एकदम
नहीं अभी है या नहीं है शरीर
अभी ज्ञान नहीं
है आज तो बता रहे थे शिल भाई है करके
है वो ज्ञान फ्लोर में देखा था उसको हाथ पैसा के मुझे पांडव बनाना
बहुत पुरानी
बहुत पुरानी है
कौन सी जो
बैग लेके घूमते
हैं
वही
मारिया है होगी
होगी
तो बाबा ने कहा उसको ज्ञान योग की ड्रेस नहीं त्याग तपस्या की ड्रेस पहनकर स्टेज पर आने को वो एक चलो ये पूरा हुआ उसके बाद में दादी जानकी को याद किया पान का बेड़ा उठाया और बाकी लोगों ने सहयोग दिया, फिर कहा कि चलते फिरते ये क्या नहीं चलते फिरते नहीं, जैसे जैसे विनाश नजदीक आते जाएगा वैसे लोग तुमको यही सोचेंगे ढूंढने निकलेंगे कहाँ है वो फरिश्ते, इन्होंने ही हमको बाप का परिचय दिया था। फिर वो सेवा के बारे में कहा ना कि सेवा कैसी भी असफलता हो नहीं सकती, जहाँ भी कदम रखो वहाँ सेवा है। फिर वो जैसे तुम ट्रेन तुम्हारी रुकती है वैसे फ्लाइट जहाँ जहाँ रुकेगी वहाँ पर सेवा केंद्र हो। पार्टियों से मुलाकात सबसे पहला तो वृत्ति वाला वो बोल दिया हमने, फिर उसके बाद में सेकंड जो था वो माया वाला, और तीसरा तो अमर भाव का वरदान। दो चीजों के लिए अमर भाव का वरदान सदा याद रखना, पहला अमर भाव इस संसार में अभी संगम युग से माया से बचने का, और आगे अकाल मृत्यु से बचने के लिए। तो सदा याद रखो किसने कहा है, बाप ने कहा है ये तुमको नशा रहना चाहिए, सर्व प्राप्ति है। एक बार कोई बहन मुझे आज बता रही थी कि प्रकाश मेरी दादी थे और यहाँ पे बहनों का समारोह हो रहा था, तो किसी ने पूछा दादी को, बहुत पहले की बात है, कि दादी आपका इनके लिए क्या प्रेरणा है। तो दादी ने कहा मैं केवल इतना चाहती हूँ कि सब बहनें जिंदा रहे, बस ये सब जिंदा रहे, याद रहे बाप ने जो वरदान दिया है अमर भाव। कोई नहीं नहीं बहने थी ना, बस दादी इतना ही चाहती है कि सब बहने जिंदा रहे, माया से ना मरे। बस स्लोगन वरदान सर्व प्राप्ति संपन्न हो, तुम्हारे चेहरे से ये ना दिखाई दे कि त्याग, कोई देखे कि बोले अरे बाप रे इतने बड़े त्यागी हम तो नहीं आ सकते, भाग्य दिखाई दे। मधुबन वालों के लिए बाबा ने कहा है ना, मधुबन वालों के चेहरे से भाग्य दिखाई दे तब लोग आकर्षित होंगे, अगर त्याग देखेंगे तो कहेंगे अरे ये ठीक है तुम लोग ही ठीक है तुम्हारा चले दो हम तो नहीं आ सकते, हमसे नहीं होगा ये तुम लोग का अच्छा है। स्लोगन लोगों तो बोल दिया ना अनिल भाई ने, संगठन की शक्ति है और क्या एक मत हो तो उमंग उत्साह, संगठन उमंग उत्साह और एक मत, एक मत का संगठन है वहाँ सफलता। अच्छा तो ये थी एक हफ्ते का और आज की मीटिंग, और कुछ बोलना है किसी को, दो मिनट है हमारे पास 10 बजने। अगले हफ्ते का प्रोग्राम, एक हफ्ते में ये जो अटैचमेंट वाली बात है ना इसके ऊपर अटेंशन, इसी से भी अटैचमेंट ना हो, ये है तो ही चाहिए होगा नहीं
याद सहज हो
जाएगी, ये याद ये अटैचमेंट की है ना देहधारी का, वो भी एक सूक्ष्म बोझ है जो आत्मा को योग नहीं करने देता है, उसकी याद आती रहती है एकदम किसी भी रीति से,
वो नेगेटिव से पॉजिटिव
ना, तो उससे बात किसी से बात करने की फोन करने की ये सब भी एक प्रकार का सूक्ष्म आकर्षण है। छोड़ दो धीरे धीरे अटैचमेंट
इस संबंध में अटैचमेंट
वो मोह वही सारा पदार्थ खाने पीने में सोने में घूमने फिरने में
अटैचमेंट में अटैचमेंट
साधनों में वस्तुओं में टीवी में नेट में मोबाइल में ये तो सब ब्राह्मणों के मुख्य अटैचमेंट है। क्रिकेट में न्यूज में क्या हुआ कौन क्या हुआ, शपथ ग्रहण समारोह हाँ हाँ वो सारे जो है
दो अटैचमेंट के प्रकार
शपथ ग्रहण क्या
सफल
अच्छा ओम शांति एक मिनट योग Thank you.